नहीं नहीं, नाम रूप में नहीं फंसूंगा, शिव बाबा को याद करूंगा, नाम रूप में नहीं फंसूंगा, शिव बाबा को याद करूंगा।
शाबाश,
माया की छाया से बच न जरा, इसमें विकारों का जादू भरा।
ओम शांति। एक सिपाही ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा। वो चोर अभी अभी चोरी करके घर से बाहर ही निकला था, तो सिपाही ने उसे वहीं दबोच लिया। चोर ने कहा कि मेरी एक विनती है। सिपाही ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, नाम बताओ, सब बताओ। नोट करना चालू किया। चोर ने कहा, बस एक विनती है, घर पर एक फोन करना है बस, कि घर पे बता दूं मैं पकड़ा गया हूं, कुछ समय नहीं रहूंगा, और मुझे अपने वकील को भी फोन करना है। सिपाही को बात थोड़ी जची। चोर अंदर गया, खिड़की थी, और कूद के भाग गया। सिपाही को लगा धोखा हुआ है, बेईमानी हुई है, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए चोरों पर। संयोग की बात कि 6 मास के बाद वही चोर एक जवाहरात की दुकान में पकड़ा गया। उसके हाथ में जवाहरात थे, तो सिपाही ने कहा, इस बार मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमने पिछली बार मुझे धोखा दिया था। सिपाही ने फिर कहा, एक एक फोन करना है मुझे, एक फोन करना है, और मुझे अपने वकील को भी बताना है, फिर आप भले मुझे ले जाओ, बस मैं अभी आता हूं। सिपाही ने कहा, बिल्कुल नहीं, अभी मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा, ये लो जवाहरात पकड़ो, फोन मैं करके आता हूं, तुम यही रुको। और सिपाही फोन करने गया और चोर जवाहरातों सहित गायब। तो माया ने कई बार हमको धोखा दिया है, और कई बार हम ही तैयार थे धोखा खाने के लिए, क्योंकि हर बार माया अपना एक नया रूप धारण करके आती। तो आज से हम एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है, माया एक और उसका रूप अनेक। ये 21 दिन की श्रृंखला है। तो आज का टॉपिक है रोना। सुशील भाई लेंगे रोना। कल का टॉपिक सुखदेव भाई, रूसना। नेक्स्ट मूड ऑफ करना या होना, अरविंद भाई। उसके बाद में कमलेश भाई। 5 तारीख नाराज होना। उसके बाद में राम भाई, भयभीत होना, भय विकार है। उसके बाद में रविनेश भाई, चिड़चिड़ापन। 7 तारीख उसके बाद में दूसरों की निंदा करना। 8 तारीख देवेंद्र भाई, अपना टॉपिक सब याद कर लो। उसके बाद में ट्यूसडे चिमन भाई, ऑर्डर चलाना। उसके बाद में 10 तारीख अंदर एक बाहर दूसरा, इसको क्या कहा जाता है निखिलेश भाई, कौन सी मुरली है 69 में, डेट कौन सी डेट है, सुशील भाई ने रिवाइज कराई थी कभी ये मुरली। खौफनाक किसको कहा जाता है, 69 की अव्यक्तवाणी है, कौन सी तारीख 29 क्या। उसके बाद में है 11 तारीख रौब दिखाना। कहाँ है नरेश भाई, नरेश भाई इधर है नरेश भाई। उसके बाद में मंजू बहन, 12 तारीख रीस करना। उसके बाद में 13 तारीख दूसरों को दोषी ठहराना, चंद्रशेखर भाई। उसके बाद में करना कम कहना ज्यादा, डॉक्टर पूछा। ठीक है। उसके बाद में चंचलता करना, शरारत करना, किधर है शाहू भाई। उसके बाद में राई का पहाड़ बनाना, महेंद्र भाई। उसके बाद में मांगने के संस्कार, डॉक्टर कैलाश भाई। उसके बाद में बहानेबाजी, आशीष भाई। उसके बाद में 19 गलती को महसूस न करना, शैलेंद्र भाई। ये 19 तक हो गया। 20, 21 और 2 बचे हैं, प्रभाकर भाई। हाँ, प्रभाकर भाई के लिए फीलिंग देवी, फीलिंग देवी अर्थात छुई मुई, टच मी नॉट। उसके बाद में लास्ट, हाँ 20 तारीख लास्ट में दीपाली, दीपाली बहन कौन सा दिन है कौन सा दिन है वो कहाँ है लिस्ट अवगुण वाली, आपके पास है, याद रखना पर नहीं अवगुण है ही नहीं दर्द नहीं। चलो दूसरा दे, रेस तो हो गया, वो भी हो गया। नहीं नहीं उसका लिस्ट है ना, आपको भेजा था शायद ना रोब में आ गया रोब ढूंढ के, हाँ हाँ मिल गया। झूठ बोलना ये नहीं हुआ ना, ठीक है। तो आज हम साथ में सामूहिक रूप से क्या करेंगे, अभी रोइंग आज का टॉपिक है रोना, प्रूफ रोना बंद, ठीक है। तो माया एक, तो रोना भी माया का क्या एक रूप है। योग की धूप से आंसुओं की टंकी सुखा दो, अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति।
ओम शांति। तो आज से एक नई श्रृंखला आरंभ होने जा रही है, माया एक रूप अनेक। इसकी वैसे तो हर ब्राह्मण अनुभवी होता है, लेकिन फिर भी इन कमजोरियों के ऊपर भी अगर गहराई से चिंतन किया जाए तो एक निकाल, कमजोरियों से मुक्त होने का एक माध्यम है ये भी। जब तक हमें अपनी आंतरिक कमजोरियों का पता नहीं होता है तो वो सूक्ष्म रूप से बढ़ती जाती हैं, उनके ऊपर गहराई से चिंतन करने से, रियलाइजेशन करने से, महसूस करने से जब धीरे धीरे पता चलता है तो फिर निकालने के लिए भी हमारी बुद्धि उसका चिंतन करती है। तो आज है माया का रूप, जो पहला रूप है वो है रोना। जिंदगी में रोना धोना चलता ही रहता है, बचपन से ही बच्चा जन्म लेता है तो उसको नहीं रोता तो फिर रुलाते भी है, डॉक्टर रुलाते हैं, माँ रुलाती है, इंजेक्शन से रोते हैं और जिंदगी पूरी रोते रोते निकल जाती है और अंत में जब शरीर छोड़ता है मनुष्य तो भी सब रोते रोते हैं। ऐसे ब्राह्मण लाइफ भी जो है, बाबा कहते सारी दुनिया कौन सी है, रोने की दुनिया। तो इसमें भी रोना और हंसना चलता ही रहता है। जब जब ब्राह्मण होश में रहते हैं तब तब रोने से मुक्त रहते हैं, जैसे बेहोशी की निद्रा में जाते हैं विस्मृत होते हैं तो आंतरिक रोना चलता ही रहता है। तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ रोना आता है, क्यों रोता है मनुष्य, और सबसे ज्यादा रोना किसको आता है, बहनों को, क्यों, क्या कारण है उसका। दिल सॉफ्ट होता है, आंसू की टंकी बहुत है, सॉफ्टवेयर ही ऐसा है। कहीं कहीं रोने को एक अपना हथियार भी बना लेते हैं, वो एक हथियार का काम करता है। तो बचपन में कई दफा ऐसे भी होता है कुछ परवरिश अपने अनुसार नहीं मिलती है, जो बच्चे चाहते हैं उस अनुसार अगर परवरिश नहीं मिलती है या उनकी लालना पालना नहीं होती है, कई अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो इच्छाएं उनको अंदर ही अंदर मन में कचोटने लगती हैं, अंदर ही अंदर मन को उद्वेलित करती हैं। फिर उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए फिर बहुत प्रयास भी करते हैं और इच्छाएं पूर्ण ना होने पर फिर और ही और दुख बढ़ता जाता है। तो बचपन से लेकर फिर जिंदगी में अनेक प्रकार की ऐसे स्टेप्स आते हैं जहाँ जहाँ कई बार असफलता मिलती है और असफलता मिलने के कारण भी अंदर ही अंदर रोना होता है। भले प्रत्यक्ष रूप से आंखों से नहीं दिखाई देता लेकिन मन का रोना चलता ही रहता है। तो ऐसी अवस्थाओं से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए हम भी अपने आप को कैसे मजबूत बनाएं उसके ऊपर भी देखेंगे, क्योंकि हार जीत ये जिंदगी तो खेल है, ये हार जीत तो इसमें चलती रहती है, लेकिन हमको उसमें बैठ नहीं जाना है, क्योंकि हम सभी जिस पथ पर चल रहे हैं इस पर रोने जैसी कई समस्याएं आएगी, कई परिस्थितियां आएगी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हम अपने आप को अचल अडोल रखें, रोना प्रूफ बनकर रहें, उसके लिए बाबा ने हमको बहुत सारी विधियां बताई हुई हैं। बाबा ने कहा जो रोते हैं वो कौन है, एक तो विधवा है, दूसरा खोते हैं, जिन तो जिन रोया तिन खोया। मनुष्य रोता तब है जब उसको कोई अप्राप्ति होती है, असफलता होती है, जी रिजेक्शन होता है, और भी बहुत सारे कारण रोने के, जब मनुष्य को कोई ऐसी बीमारी यहाँ घेरती है, किसी की मृत्यु, सो जन्म की मृत्यु होती है, दुख होता है, दुख ही दुख चलता रहता है अंदर, क्योंकि बहुत गहरी अटैचमेंट होती है। कई बार जिसने बहुत जिंदगी में हमारी पालना की है, समय पर सहयोग भी दिया है, उससे बहुत हमारी गहरी अटैचमेंट हो गई है, लगाव हो गया है, कदम कदम पर हमारी कोई देख रेख करता है और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी रोना होता है। भविष्य को लेकर आशंकित रहते हैं कि आगे मेरा क्या होगा, मना किसी को अपना हमने सहारा बना के रखा हुआ है और वो सहारा अगर टूट जाता है तो भी फिर मृत्यु होती है, दुख होता है मृत्यु पर। शारीरिक पीड़ाएं, शारीरिक वेदनाएं, बीमारियां, जब मनुष्य हॉस्पिटल में पड़ जाता है, अचानक कोई एक्सीडेंट होता है और हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, तब दुख होता है, अंदर ही अंदर तूफान चलते हैं संकल्पों के, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे कई प्रकार की धोखा मिलता है, अपनों से धोखा मिलता है, जब जो तो जिनको हम जानते नहीं हैं उनसे धोखा मिले तो ठीक है, लेकिन जिसको जानते हैं और वो ही धोखा दे के चला जाता है तो मन को बड़ा धक्का लगता है, गहरा आघात होता है, बिजनेस में घाटा, कोई भूल हो जाती है तो पश्चाताप करते हैं, तो आंसू आते रहते हैं, है जी, कुछ ऐसे आंसू आते रहते हैं, वो अनुवांशिक बीमारी होती है, आदत के वश होते हैं, हाँ, कई मेडिकल बीमारियां हैं वो भी, हाँ, वो दूसरे प्रकार के आंसू, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दुख के आंसू होते हैं, एक होते हैं सुख के, खुशी के आंसू, और दोनों आंसुओं के जो बहने की धारा वो अलग अलग होती है। दुख के आंसू किधर से बहते हैं और सुख के आंसू किधर से बहते हैं, वो घड़ियाली आंसू होते हैं, तो दुख के आंसू जो है ना इधर से बहते हैं और जो खुशी के आंसू वो इधर से बहते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप रो के देखना। और जो खुशी के आंसू होते हैं वो मीठे होते हैं और जो दुख के आंसू होते हैं वो नमकीन होते हैं। बिरह वाले आंसू बीचों बीच बह देते हैं, आप रोक के देखना। बिछो बिरह के आंसू, हाँ जी, गोपियों के आंसू, जो आंसू मोती बन जाते हैं, जो भावे कई दफा कहते हैं सीप। तो रोने के बहुत सारे फायदे भी हैं, खुल के अगर ने ऐसा कई बार चिकित्सकों के मनोचिकित्सक जो उनका अगर आप थोड़ा ध्यान करेंगे तो उन्होंने भी कई दफ़ा ये बताया कि रो लेना चाहिए खुल के अगर कुछ भरा हुआ था। तो ऐसा नहीं कि अगर वो हम दबा के रखें और समय आने पर उसका विस्फोट होगा तो रो लेना चाहिए। लेकिन जब ज्ञान हमको मिल गया है, अगर लोग कुछ कहते तो बाथरूम में जाके रो लो, कोई देखने वाला नहीं है, राजाई के अंदर रो लो, आईने के सामने रो, कोई व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति वो जो फूल ना खोली हमारी, जो आईने के सामने रो लो, जो जिस पर हमारा विश्वास हो बाबा के सामने रो लो, सबसे अच्छा उत्तम तरीका है तो बाबा के सामने रो लो, लेकिन रोकना नहीं है उसको। लेकिन वास्तव में हम सबको ज्ञान मिल गया तो रोने धोने की तो बात ही कोई नहीं रही है, लेकिन फिर भी अगर आंसू आते हैं तो उस पर हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, कैसे हम अपने आंसुओं को रोकें। प्यार के आंसू होते हैं, वो प्यार के आंसू फिर एक अलग चीज़ है, वो तो वाइब्रेशन भी, जैसे कल बाबा ने कहा कि बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आंसू अगर आते हैं तो क्या करना है, क्या युक्ति है, 8-10 युक्तियां हैं जी, युक्तियां आंसुओं से मुक्त होने की, रोने से मुक्त होने की। अगर जिंदगी में रोना आता है, जब इंसान को कुछ उसका बिजनेस में जैसे बताया घाटा होता है, तो सामाजिक अत्याचार, जैसे बहुत अच्छे अच्छे देशभक्त होते हैं, राष्ट्रभक्त होते हैं, तो देश के लिए भी रोते हैं। जैसे कई बार देखा मिनिस्टर लोग जो हैं वो भी कई दफ़ा रोते हैं, हाँ वो भी देखो, राम जी से भी हम सीख सकते हैं, राम की सीता होगी तो रोए कभी, हो नहीं रोए वो, किसी से हेल्प मांगी नहीं मांगी, घर में कोई फ़ोन थोड़ा नहीं किया उन्होंने जनक को कि आपकी बेटी चोरी हो गई और आओ, भरत को थोड़ा नहीं फ़ोन किया किसी ने, नहीं उन्होंने अपने आप ही। तो हम सब के अंदर वो क्षमता है, संसार के आंसुओं को पोषने के लिए ही हम तो इस धरा पर अवतरित हुए हैं। तो कुछ तगड़े पावरफुल संकल्प करने हैं मन के अंदर, तो सबसे पहली बात है जो संसार में भी सोचते हैं कि जो बताए अगर हम घाटा होता है कुछ चला गया नुकसान हो गया, तो गीता सार को याद रखना। सबसे पहली बात गीता सार, तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम लाए थे, क्या लेकर जाएंगे। पता है संसार के लोग भी इस बात को बार बार पढ़ते हैं, इसका चिंतन करते हैं, लेकिन उस पर उसे धरातल पर आने के लिए, मानसिक धरातल पर आने के लिए उसमें शक्ति चाहिए, और वो शक्ति हमें स्वयं सुप्रीम अथॉरिटी से मिलती है। तो दोनों का तालमेल चाहिए। जब हम बाबा की याद में गीता सार को अगर हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो रंग लाती है, तो उन आंसुओं से मुक्त हो सकते हैं। और सच्चाई से जो इस ज्ञान में के टच में भी नहीं है, वो भी इससे जानकार हैं कि गीता सार से अनभिज्ञ नहीं है वो भी, लेकिन लाने की शक्ति नहीं है उसको। तो हम सबको तो बाबा ने तीसरा नेत्र दिया हुआ है, इसलिए ज्ञान का नेत्र हम तीसरा हमेशा खुला रखेंगे और उसको सामने रखेंगे। हमारे भी सामने जब एक परिस्थिति आई थी ज्ञान में आने से थोड़ा समय पहले, जो अंतिम परिस्थिति थी माना जो एक हाई क्लास की अंतिम परिस्थिति, तो सब लोग बैठे हुए थे और सामने लगा था गीता सार, तुम व्यर्थ क्यों चिंता करते हो। तो हमारी चिंताएं सचमुच जब उस बाबा की याद में हमने वो चिंताओं को जो सामने गीता सार लिखा हुआ था उसको पढ़ा, तो एकदम निश्चिंत और पहली बार जिंदगी में हमने किसी का सामना करने का साहस रखा, और वो साहस स्वयं परमात्मा की शक्ति से हमारे अंदर आया, नहीं तो अदरवाइज जिंदगी में हमने उनके सामने कभी आँख उठा के देखा भी नहीं था, बोला भी नहीं था, तो उसमें हमको हमारे में वो शक्ति आ गई, ताकत आ गई, एहसास हुआ उस चीज़ का। तो गीता सार को हमको अपने जीवन में आत्मसात करना है, तो वो भी हम उस चीज़ से रोने से मुक्त हो सकेंगे। दूसरी बात है जीवन साथी हमारा कौन है। अगर संसार में रोते हैं तो ढूंढते हैं किसी को, किसको अपना दुखड़ा सुनाऊं, कौन हमारे आंसू पोंछ सकता है, कौन हमें मार्गदर्शन कर सकता है, कौन हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, कौन हमें रास्ता बता सकता है। तो संसार वाले तो हैं विनाशी, वो तो विनाशी विचार हैं, विनाशी मार्गदर्शन देंगे, अल्पकाल के देंगे, फिर से नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, समाधान हो जाएगा, लेकिन फिर वो समाधान सदाकाल का नहीं होता है। लेकिन हमारा साथी कौन है? स्वयं सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान। तो अगर हम उसको हमेशा अपने साथ रखें, इसलिए कहते हैं ना, डरने की क्या बात है अगर ईश्वर अपने साथ है। तो दूसरी बात है, ईश्वर को अपना हमेशा हम साथी बना के रखें, अलग अलग संबंधों से, किसी भी संबंध से। जैसे आज भी, आज की मुरली में भी बहुत अच्छा संबंध है, कौन सा है? खुदा दोस्त। उसको अपना साथी बना के रखो। रावण दुश्मन है, इसलिए उसको जलाते हैं, खुदा तुम्हारा दोस्त है। तो दोस्त को अगर साथ रखेंगे, सारे दिल की हालचाल हम उसके साथ करते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, तो हमारा दिल हमेशा हल्का रहेगा, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है, विशाल दिल है। बाबा ने कहा, उस तख्त पर आप सारे दिन का काम काज कर सकते हो, इतना बड़ा दिल तख्त है वो। तो दूसरी बात है, ईश्वर को अपना हमेशा हम साथी बना कर रखें। तीसरी बात, ड्रामा कल्याणकारी है। इस ड्रामा में हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता है। ड्रामा में फिर अनेक, उसके अनेक विधियाँ हैं, ड्रामा के अनेक पॉइंट हैं। अगर उनका भी हम सवेरे शाम बीच बीच में, जैसे डॉक्टर लोग दवाई लिखते हैं, दिन में 3 बार, दिन में 2 बार, दिन में 1 बार, ऐसे ड्रामा में की गोलियाँ लेते रहना हमेशा। ड्रामा कल्याणकारी है, जो हो रहा है वो सत्य है, ड्रामा में यही होना चाहिए, भगवान को यही पसंद है। ऐसे ड्रामा की अनेक सारी बातें हैं। तो इस ड्रामा में हम आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, हमारे पार्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता उसमें, हमारे पार्ट के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगर वो हो रहा है तो वो हमारा हिसाब किताब है, और वो हमारे हिसाब किताब को चुकतू कराने के लिए एक माध्यम बना हुआ है। वो तो जल्दी जल्दी हमारे हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए आया हुआ है, वो हमारे लिए कल्याणकारी है, हितकारी है। तो ड्रामा भी एक ढाल है, जिस ढाल को हम हमेशा अपना कर रोने से मुक्त हो सकते हैं। तो ये है तीसरी बात। पहली बात कौन सी बताई? गीता सार। और दूसरी बात, भगवान का साथ। और तीसरी बात, ड्रामा। चौथी बात है, अपने को अकेले रहने की आदत डालनी। कोई आए या जाए, क्योंकि अकेले आए और अकेले जाना है, हम सब इस बात से बाकी हुए, इस बात को जानते हैं, अकेले आए और अकेले जाना है। अकेले में कई बार मनुष्य डरता है बहुत, लेकिन अकेले में रहने की आदत डालनी है, डर समाप्त हो जाएगा। नहीं तो घर में तो क्या होता है, बचपन में रात को घर में अगर कमरे से बाहर भी नहीं निकलते लोग, अंधेरे से डरते हैं जाने से, लेकिन आदत तो डालनी पड़ेगी। किन परिस्थितियों में हम शरीर छोड़ेंगे कोई भरोसा नहीं है, तो अकेले में रहने की आदत डालनी है, अकेले और एकांत में। तो एकांत से क्या होता है, बहुत शक्ति आती है, आत्मा में ताकत बढ़ती है। जब अपने आसपास कोई होता है तो हम थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो डर लगता है। लेकिन अकेले रहने की भी आदत डालनी बहुत ज़रूरी है। अकेले में हमारा चिंतन जो है बहुत, उस चिंतन प्रखर हो जाता है, चिंतन धीरे धीरे बढ़ता है, चिंतन की धारा अपने आप, चिंतन के जो विचार हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, एक नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। तो अकेले में रहने की आदत डालनी है, एकांत में रहने की आदत डालनी है। तो चौथी बात है एकांत, अकेला। और पांचवी बात, हाँ खुश तो जब हो ही जाएंगे, हाँ पांचवी बात है क्रिएटिव माइंड। क्योंकि जब आदमी रोता है, उदास होता है, अच्छा नहीं लगता कुछ भी, तो क्रिएटिव माइंड जरूरी नहीं हमको ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्रिएट करना है, कुछ खाने पीने की चीज़ें बना सकते हैं, हाँ रोने में क्रिएटिविटी, और रोने के बारे में सोचिए लोग कैसे कैसे रोते हैं, उसी पर सोच लीजिए। तो क्रिएटिव माइंड माना घर में हम अपने आप को थोड़ा बिजी कर दें, नहीं तो मन क्या हो, बस वही कोई घटना याद आ गई 20 साल पहले वाली, वही घटना को लेकर बैठ जाएंगे। तो हम स्थूल कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व कर दें, घर की सफाई करें, या अपने कुछ नोट्स लिखें, मुझे रोना आखिर क्यों आ रहा है, अपने रोने के बारे में चिंतन, उस पर चिंतन करें, मुझे रोना आखिर क्यों आता है। इतने सालों से हम ज्ञान में चल रहे हैं, संसार में जो बिना ज्ञान के लोग हैं वो भी नहीं रोते हैं। संसार में देखे जिनको हाथ पाँव नहीं है, वो अपने जीवन को प्रेरणा स्रोत बनाया हुआ है अनेकों आत्माओं के लिए, और हम सबको भगवान ने। तो संसार में एक रोने का कारण ये भी है, तुलना करते हैं हम दूसरों से कि इनके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी आ जाता है, फिर अनेक दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। संसार में देखो जितने को हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, ऐसे ऐसे कर्तव्य कर दिखाते हैं कि अनेकों के लिए प्रेरणा आदर्श आदर्श मूर्त बने हुए, प्रेरणा स्रोत बने हुए नेक। हाँ, जिनके हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, तैरते भी है, वो सारे काम करते हैं। देखो एक छोटा सा बच्चा, एक वीडियो आया था बच्चा, उनका भी उसका भी हाथ नहीं था, लेकिन उसको माँ बाप ने दूसरा हाथ लगा के दिखाया तो कितना खुश हो रहा है उसको भी देख के, वो एक हाथ तक देखो कितना खुश। माना बचपन में ऐसे संस्कार उसको रोपे जा रहे हैं कि उसकी कोई एहसास ही महसूस ही नहीं होगा उसको। तो हम तो कितना कुछ हमको मिला हुआ है, ओह सौभाग्य हमारा। संसार में तो कितने कितने बेचारे लोग होते हैं जिनको कुछ खाने को भी नसीब नहीं होता है, फिर अंधजन होते हैं कई, कभी रोते हैं वो कि अंधजन कितना अच्छा अच्छा गीत गाते हैं। तो हम क्रिएटिव माइंड हो, कुछ गीत गाना सीख लें, कुछ नोट्स लिखें, कुछ कला सीख लें, कुछ खाना बनाना सीखें, कुछ लिखना पढ़ना सीखें, टोली बनाना बना के कुछ किसी को खिलाओ ताकि हमारे आंसू खत्म हो जाए, दुआएं मिलेगी किसी को खिलाने से। हाँ, कुछ अपने स्वेटर वेटर दे दें, ड्राइंग करें रोने से मुक्त होने के लिए। तो क्रिएटिव माइंड होना ब्राह्मण लाइफ में अति आवश्यक है, नहीं तो हमारी जो एनर्जी है ना धीरे धीरे जड़ होती जाती है, वो आगे बढ़ेगी नहीं, उसको बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास मानो संपदा तो है, लेकिन उस संपदा को आगे बढ़ाने के लिए उसको कुछ तो प्रयोग में लाना पड़ेगा ना, तो क्रिएटिव माइंड होना बहुत जरूरी है। अगर रोना आता तो फिर घूमने निकल जाओ, अकेले रो लो फिर, वहाँ कोई देखने वाला नहीं होता है, लेकिन वो प्रकृति के सानिध्य में फिर वो रोना ही बंद हो जाएगा। लॉन्ग लॉन्ग वॉकिंग पर कुछ चिंतन करते हुए रोने पर ही चिंतन कर लीजिए, रोने पर रोना क्यों को क्यों क्यों आता है, रोने के नुकसान क्या हैं। रोने के नुकसान तो हैं, एक तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, जैसे काली बाबा ने, वो अपने को चेक तो करते हैं लेकिन चेंज नहीं करते हैं, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, और ही हम अपने आसपास के माहौल को बिगाड़ेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, है जी, खुशी खुशी गायब हो जाएगी, मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ, ये आगे पॉइंट आ रहा था, ये अपनी सुंदरता पर ही रोते रहते हैं फिर, तो सुंदरता और कुरूपता मैंने अपने आप अपने पर ही चिंतन चलता रहता है कि हम तो देखने में ऐसे, हमें कोई देखता नहीं है, यही चिंतन चल रहा है। एक हीन भावना, हीन भावना अपने प्रति है, तो ये तो आंतरिक सौंदर्य, उसको निखारना है। तो अपनी कुरूपता पर तो और ही अच्छा, अगर हमारा शरीर कुरूप है तो और ही अच्छी बात है, किसी का आकर्षण नहीं होगा, नहीं तो और भी रोते हैं, किसी से कोई प्यार मोहब्बत नहीं मिल रहा है, कोई प्यार नहीं हमको करता है, कोई हमको पूछता नहीं है, कोई हमको आगे बढ़ाता नहीं है, हमारी तरफ कोई नज़र नहीं रखता है, हमारे ऊपर किसी की आँख ही नहीं है, पता नहीं कौन से कोने में पड़े हुए हम। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए पुरुषार्थ में बाधक हैं, जो हमको मन से रुलाती हैं, आंखों से रुलाती हैं, हमारे जीवन में आंसुओं की नदी बहती रहती है। तो इनसे हमको मुक्त होने के लिए ये चीज़ें करनी हैं। फिर मौसम से भी रोते हैं, सर्दी बहुत है, गर्मी बहुत है, देखा कई बार कितना चिंतन करते हैं लोग। अब हमारा तो डिपार्टमेंट, जो जिस डिपार्टमेंट में हमको सेवा मिली हुई है, वो तो मौसम से रिलेटेड भी है, डेली हमको मौसम की खबर लेनी पड़ती है, तो कम से कम 10-15 तो लोग यही फोन आ ही जाते हैं कि आज का टेम्परेचर कितना है और रास्ते चलते चलते पूछेंगे और सबको बताना, अगर नहीं बताया तो मुंह ही टेढ़ा हो जाएगा उनके तो मौसम का भी रोना रोते रहते हैं हम, मौसम ऐसे नहीं होना चाहिए, बहुत सर्दी है, गर्मी है, वो तो काम करेगा, भगवान ने हम सबको साधन दिए, उनका यूज़ करो। तो मौसम का भी रोना देना होता है, प्राकृतिक कारण है, तो इन सब से हमको मुक्त होना है। और रोना किस लिए आता है, किसी की, हाँ तो वो आदत ही हो गई है, उनको खुशी माना खुशी नहीं मिलेगी। हाँ, कई बार गलतियाँ, कई बार हमारे पर कोई अगर कटाक्ष करता है तो भी हम अंदर ही अंदर होते हैं, तो अपने दिल को पत्थर दिल बनाना, इस दिल के अंदर कुछ भी कोई हथौड़ा मार दे कुछ होना नहीं चाहिए। अगर हमने गलती की है और स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन रोना चालू कर देते हैं। तो गलतियों को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेना, ये नहीं सोचना हम इससे हम असफल हो गए हैं, हमारे से बार बार गलती हो गई है। गलतियाँ तो संसार में कितनी होती हैं, असफलता हजारों बार होती है, संसार में कई ऐसे आविष्कारक हैं जिन्होंने अनेकों गलतियाँ करने के बाद अनेकों सफलताएँ असफलता उनको मिली, लेकिन फिर भी अंत में उनके सफलता कदमों में झुकी आगे। तो ऐसा नहीं है कि इस ब्राह्मण जीवन में असफलता नहीं होगी, असफलता तो कदम कदम हो सकती है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिरकर हमको संभलते रहना है, बाबा ने जो कहा। लेकिन बार बार ये भी नहीं कि हमको गिरते रहना है, उसकी भी अटेंशन रखनी है। ऐसा नहीं कि सामर्थ्य हमारे में उतना नहीं कि बार बार हम गिरते रहें, अपने में शक्ति भरनी है। अनेक ऐसे विधियाँ हैं अपने में स्वयं में शक्ति भरने की, जैसे उस दिन भी बताया था, चार प्रकार की शक्तियाँ हैं जिन्हें हमें स्वयं में डेली भरना है। कौन कौन सी बताई थी? सबसे पहली शक्ति है परमात्मा शक्ति, दूसरी शक्ति है ब्रह्मांड की शक्ति, अपने घर की वो सारी ऊर्जा स्वयं में रोज भरनी है। तीसरी शक्ति है आत्मा, अपने स्वयं में शक्तिशाली है। जब हम देह अभिमान से मुक्त होते हैं, आत्मा की स्मृति में स्थित रहते हैं, तो वो स्वयं में शक्तिशाली स्थिति है, वो समर्थ स्थिति है। उस समय आंसू आएंगे नहीं, आंसू देख के सूख जाएंगे। और चौथी शक्ति है प्राकृतिक शक्ति। तो ये चारों शक्तियाँ अगर डेली हम भर रहे हैं स्वयं में, तो हो ही नहीं सकता है रोना धोना आए हमारे जीवन में, तो उस रोने धोने से मुक्त हो सकते हैं। बड़ी बात नहीं है रोने धोने से मुक्त होने के लिए। हाँ, दो वो आपके टॉपिक में आएगा। फिर हम कब रोते हैं, ये भी इसमें आ गया, आध्यात्मिक पुरुषार्थ में जब मन भटकता है बार बार, तब अंदर ही अंदर होते हैं, अपने आप को कचोड़ते रहते हैं, क्यों मुझे बार बार मन भटक रहा है, तो विकार रुलाते हैं अंदर से, अंदर में जो बैठे हुए हैं। तो मन को भटकने की आदत है ना, तो और भटकाना उसको भी। किस में भटकाएंगे? बहुत सारी चीज़ें, ज्ञान में भटकाना उसको भी, ड्रिल में भटकाना, वही तो भटकाना उसको भी। बताया ना, धोखा माया ने दिया, अब हम माया को धोखा देंगे। चोर तो धोखा दे लिया बार बार, अब चोर से धोखा खाने वाले नहीं है, अब माया को धोखा देना बार बार। कैसे भटकाएंगे मन को? ज्ञान योग में भटकाएंगे, सेवा में भटकाएंगे। ड्रिल कीजिए, अपना चिंतन कीजिए, कुछ लिखिए, मुरली के पॉइंट जैसे बताया, खौफनाक कौन है, अब मन को भटकाइए, ढूंढिए कहाँ लिखा हुआ हो, वैसे ढूंढ लिया दो मिनट में उन्होंने। लेकिन होता क्या है, अब इन चीज़ों से जाने से मन थोड़ा खींचता है पीछे, कौन माता बच्ची करेगा ऐसे सोच, क्योंकि पहले के संस्कार पड़े हुए हैं, क्योंकि सहज है ना, राजा लोग हैं ना अपन, तो ढूंढने थोड़े नहीं जाते उसको लेकिन ऐसा राजा नहीं बनने का। मन को भटकाने की आदत डालनी है ज्ञान योग में, स्पिरिचुअल पथ पर मन को भटकाना है ना, तो भी हम रोने से मुक्त हो सकते हैं। जंगल बात। दूसरा फिर स्वमान का चिंतन, स्वमान की स्थिति में स्थित रहना है, हम कौन है, क्या हमारा बाप कभी रोता है, भगवान कभी रोता है, तो फिर हम क्यों रोते हैं? ब्रह्मा बाबा कभी रोए? कितनी सारी समस्याएं, अनगिनत समस्याएं, अनेकों समस्याएं, उनके सामने कोई एग्जाम्पल भी नहीं था, लेकिन कैसे सारी समस्याओं का उन्होंने समाधान किया, अपने परिवार से ही लौकिक अलौकिक कितनी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं में भी अचल अडोल अडिग एक पर्वत की तरह अडिग रहे। तो हम भी तो उन्हीं की संतान हैं, वो सारे गुण, वो सारी शक्तियाँ, वो सारे संस्कार, वो सब हमारे अंदर मौजूद हैं, क्योंकि वो सारे संस्कार हमारे हैं, वो हमारा पिता है, तो बच्चों में तो नेचुरली वो हैं कि नहीं है, तो एक्सेप्ट करना है, उस समान में स्थित होकर उसका चिंतन करना है। कल की मुरली में जो बताया था, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, लेकिन उस खाली टाइटल को याद करने से नहीं हुआ, उस पर चिंतन करना पड़ेगा। भगवान ने हमको मास्टर सर्वशक्तिवान कहा तो क्यों कहा, किस लिए कहा, कैसे हम उस पर चिंतन करें, क्योंकि खाली लिखने से भी कुछ नहीं होगा। लिखने से हाँ मन को थोड़ा अंगेज कर सकते हैं, लेकिन जो शक्ति आएगी उसका प्रखर चिंतन करना पड़ेगा गहराई से, और उसको अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा। शक्तियाँ तो कौन कौन सी शक्तियाँ, वो शक्तियों के हम लिस्ट में ना केवल आठ बल्कि 60 शक्तियाँ लिस्ट लिखनी। ऐसे पहले से अपनों को एक टारगेट देना है, अगर हमको रोने से मुक्त होना है, अगर हमने अपने आप को टारगेट नहीं है, तो मन तो अपने आप रोने के लिए पहले से बैठा हुआ है, आंसू तो निकलेंगे निकलेंगे। इसलिए उस पर चिंतन करना है, कौन कौन सी शक्तियाँ हमारे अंदर मौजूद हैं, और वो हैं हम सबके अंदर। सामना करने की शक्ति है, कई दफ़ा हम सब ने परिस्थितियों का सामना किया हुआ है, सहन भी किया हुआ है ना, समेटा भी हुआ है। तो सारी शक्ति हमको देखना है, प्योरिटी की शक्ति है, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति, ऐसे ढेरों की शक्ति, ढेरों ढेर शक्ति हैं, परखने की शक्ति है। तो अपनी एक लिस्ट तैयार करनी है। बताया ना कि क्लासेस तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन खुद की क्लासेस तैयार करनी है अपने आप। जब तक हम अपना मटेरियल तैयार नहीं करेंगे, अपना च्यवनप्राश तैयार नहीं करेंगे, तो ताकत नहीं मिलेगी, क्योंकि हमको अपनी कमजोरियों का खुद पता है कि हमको कौन सी चीज़ खाने से हमको शफा मिलेगा, दूसरे की जो मिलेगी उसमें कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने अनुसार वो तैयार की है चीज़ मटीरियल, लेकिन हमें पता कि कौन सी हमारे में रोग प्रतिरोग क्षमता हमारी जो है वो कैसे बढ़ सकती है, चलने से बढ़ सकती है या कुछ प्रेरित करने से बढ़ सकती है, वो हमको मालूम है। तो अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करने के लिए हमको सोमान का चिंतन गहराई से करना, उस पर रुक नहीं जाना। माना ज्ञान भी हमारा, पहले भी कई दफ़ा बताया कि हमारा ज्ञानमय योग है, खाली योग नहीं है, उसमें भी ज्ञान का चिंतन चाहिए। योग में बैठे बैठे तो संकल्प आते कि नहीं आते हैं, तो शक्तिशाली संकल्पों में मन को रमण करने की आदत डालनी है तो भी हम रोने से छूट सकते हैं। फिर प्राणायाम करें, एक्सरसाइज प्राणायाम रोज, या फिर शंख ध्वनि करें, बहुत अच्छी, उससे भी नशे वसे सब खुल जाती है, वो भी सीखना चाहिए। तो प्राणायाम बहुत अच्छी चीज़ है, हम पहले नहीं करते थे लेकिन अभी करते हैं, हाँ। और ज़रूरी है, उसमें बॉडी की तंदुरुस्ती रहती है, छोटे मोटे ब्लॉकेज अपने आप ही खुल जाते हैं और एक एनर्जी की फीलिंग आती है अंदर में, तरोताज़ा रहता है, माना मन में एकदम स्फूर्ति रहती है। तो ये सबको करना है, क्योंकि जैसे कई दफ़ा जो क्लासेज जितनी भी चल रही हैं मैक्सिमम यही चर्चा होती है कि बॉडी के तल पर करना अपने को, शरीर के तल पर, क्योंकि हम जो प्राप्ति चाहते हैं ना शरीर के तल पर, हमारी आंखों के सामने दिखाई देनी चाहिए। अब मन की अवस्था तो हमको दिखाई नहीं दे रही किसी की, लेकिन शरीर तो हमको सबका दिखाई दे रहा है, अपना भी दिखाई दे रहा है। तो ज्ञान का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ना चाहिए, और वो पड़ेगा सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को तंदुरुस्त करने का प्लान बनाना है, नहीं तो डॉक्टर की प्रक्रिया करते रहेंगे हम, और डॉक्टर की जितनी प्रक्रिया करेंगे डॉक्टर लोग तो खुश ही रहेंगे, उनको तो चढ़ावा चढ़ाते रहेंगे हम, और वो एक्यूरेट दवाई नहीं लिखेंगे, वो तो बोलेंगे आते रहो हमारे पास, अच्छे भक्त हैं हमारे, ये वाले डॉक्टर नहीं दूसरे वाले बाहर वाले। तो डॉक्टर की प्रक्रिया करने से उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय हमें स्वयं की प्रक्रिया अंदर ही अंदर करनी है कि हमारे में कौन कौन सी ऐसी शरीर को जो अदरक की तरह इधर उधर निकल रहा है उसको कैसे हम कंट्रोल करें, क्योंकि ये बॉडी इस घर में अगर हमने सफाई नहीं रखी तो अंदर में रहेंगे कैसे, बदबू आएगी, कीड़े आएंगे, मच्छर आएंगे। तो आत्मा इसमें निवास कर रही है तो इसकी स्वच्छता भी उतनी ज़रूरी है, उसकी एक्सरसाइज भाग दौड़, अंदर से सारे टॉक्सिन हमारे निकल जाए अंदर ही अंदर। तो एक खुद को ही करना है, मंदिर है एक शरीर, तो इस मंदिर को हमको एकदम बढ़िया सा रखना है। मंदिर को देखते हैं मनुष्यों के विचार कैसे होते हैं, तो इस तन को, ये तन रूपी मंदिर को देख के अगर किसी के दूसरे के हमारे प्रति ऐसे वैसे विचार चल रहे हैं या हमारे विचार ऐसे वैसे चल रहे हैं तो हमने इस बॉडी के स्तर पर ही काम नहीं किया, तो अंदर में क्या होगा इसके, बाहर से ऐसा अगर मंदिर दिखाई दे रहा है तो अंदर में क्या क्या होगा फिर। तो हमको पहले इस स्थूल के ऊपर, और स्थूल में जो हम कर्म करेंगे स्थूल का जो एहसास होगा वो फिर सूक्ष्म में अपने आप काम करेगा। हम डायरेक्ट सूक्ष्म पर प्रहार कर रहे हैं लेकिन सूक्ष्म हमारे हाथ में तो आ ही नहीं रहा है, पहले हमको स्थूल के ऊपर करना है प्योरिटी का। कई दफा बताया ना कि हम जो ड्रिल करते हैं, हाँ बोला है गंगा के साथ यहां से सरस्वती देता है। तो हमको स्थूल पर बहुत काम करना है, और स्थूल पर काम करने से आत्म संतोष जागृत होगा और फिर हमारा पुरुषार्थ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। स्थूल पर काम करना है, चलना फिरना घूमना है, पसीना बहाना थोड़ा, जैसे बाबा ने बताया ना उस दिन हड्डी सर्विस के लिए क्या बताया था, नहीं वो तो करनी है, उनके लिए टाइटल दिया था कोई एक, नहीं नहीं ददीची ऋषि नहीं, प्रश्न का उत्तर था वो, हाँ मलूक 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 फरिश्ता, हाँ फरिश्ता फरिश्ता था जो हड्डी, लेकिन कुछ और भी था। अब यह मन को भटकाना, ऐसा नहीं छोड़ देने का, ढूंढना जाके या यहीं ढूंढ लेना, तीन दिन पहले की मुरली, तीन चार दिन पहले की है, हाँ मेरुआ मौत मलूक का शिकार। तो ये हड्डियाँ हमारी जो है ना, क्या कहाँ चल रही थी, हाँ सेवा में हड्डियों को लगा दो, केवल शरीर 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 में लाइट ही लाइट रहे, हड्डियाँ रहे ना। तो मन है अपने शरीर को भी एकदम तंदुरुस्त रखना है ना। संसार में भी देखो, अगर भक्त लोग भी हैं या प्राणायाम करते हैं, कई सारे ऐसे उपयोग प्रयोग करते हैं, तो पहले शरीर के स्तर पर ही हो रहा उनका, और वो कितने खुश रहते हैं, भले अंदर का बदलाव नहीं लेकिन बाहर से कम तंदुरुस्त तो है ना। तो हमें बॉडी की तंदुरुस्ती भी कर रखना अनिवार्य है, सारे घुटने वुटने सब ठीक हो जाएंगे जब हम दौड़ेंगे तो, है जी फास्ट। और जो आप आजकल बताया जो निद्रा योग का, तो इसका भी बॉडी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा रेगुलर करने के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, क्योंकि तुरंत इसके अनुभव नहीं होंगे, लंबे समय से आदत पड़ी है हमको सहज पुरुषार्थ की, लेकिन सहज पुरुषार्थ नहीं, कठिन पुरुषार्थ करना है। इसलिए अपनी दिनचर्या को थोड़ा हलचल में लाने का, तभी तो कुछ होगा। तो रोना नहीं है, हम तो कठोर हृदय वाला बनना है, एकदम पत्थर हृदय वाला बनना है, जिस हृदय पर जितने मर्जी हथौड़े पड़ ले लेकिन उस हृदय को कुछ हो ना, रोना ना निकले अंदर से। बल्कि हम तो संसार को रोने से मुक्त करने के लिए आए हैं, रोतों को हंसाने आए हैं। नाज करेगी दुनिया, तुम तो दुनिया की तकदीर हो, एक गीत है ना ऐसे, आगे भूल गया, हाँ जी, आने वाले कल की तुम तस्वीर थो। तो ये हमने बचपन में सुना था, ज्ञान के बचपन में एक सरदार जी सुनाते थे, अभी वो शरीर छोड़ के चले गए। तो हम संसार के आंसुओं को सुखाने वाले हैं। तो ये हो गया टाइम, तो शॉर्ट में हम बता देते हैं पहले, हाँ रोना आता तो पानी पी लेने का, नारियल पानी अगर ना मिले तो सिंपल पानी जोक्स पढ़ने का, हाँ जोक्स जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, और जोक में शिक्षा बहुत होती है। ऐसा नहीं कि खाली जोक हमारे मनोरंजन के लिए है, हर चीज़ में शिक्षा समाई होती है, उसको पढ़ने का। अभी जैसे चोर वाला सुना, ये चोर है तो जोक है एक हिसाब से, लेकिन शिक्षा कितनी बड़ी है, धोखा नहीं खाएगा दोबारा वो। हम किस चीज़ को कैसे लेते हैं, ये हमारे पर है, जबान को ऊपर लगा देना गया। हाँ ऐसे है, चिकित्सक की मुद्राएं बहुत सारे हाँ तो बच्चों खिलखिलाता, बच्चे के खिलखिलाता चेहरा, फूलों को देखना, प्रकृति को देखना, फूलों के साथ बातचीत करनी, पेड़ों के साथ बातचीत करनी, ये सीखना है। संसार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे जो बचपन में लौकिक में हमारे ताए जी का लड़का था, तो वो बाद में टीचर बने, तो वो हम देखा छोटे से, जब वो पशु चराने जाते थे तो पशुओं को पढ़ाते थे, तो हमने उनसे भी सीखा, देखो कितनी तमन्ना इनकी बचपन से, कितनी इच्छा है वो पढ़ाने की, और बाद में टीचर ही बने वो, लाफिंग क्लब होते हैं। हाँ तो लाफिंग हमारी नेचर होनी चाहिए, वो लाफिंग तो टेम्प्रेरी होती है, उसमें भी देखो फिर भी वो पैसा कितना खर्च करते हैं लाफिंग क्लब में जाने के लिए, और ये क्या है, ये तो लाफिंग क्लब भी है ना, ऐसा मिलेगा कभी? उल्टी, हाँ कई बार बोलते हैं गिनती करो, एक दो से लेकर उल्टी गिनती करो, ठंडा पानी पियो, नहीं तो गर्म पी लो, बर्फ से नहा लो। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, साधनों के अभाव से मनुष्य रोता है, या किसी पर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं और सहयोग नहीं मिलता तो मनुष्य रोता है, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, दूसरों से स्वयं की तुलना करते हैं, अपमान कोई करता है तो रोते हैं, निंदा करते हैं तो रोते हैं, कोई है जी कोई आरोप लगा देता है, ऐसे अनावश्यक रोप, झूठी कंप्लेंट, रिटर्न कंप्लेंट करता है कोई, तो ये सब चीज़ें, और ये होगा और ये होना भी चाहिए तो ही आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं हो रहा तो हमारा पुरुषार्थ ठीक नहीं है। हाँ वो तो पहले से 10 कम लेट उसने हमारी लिख के रखी होगी उसका पार पाना मुश्किल काम है तो ये सारी चीज़ें हैं, बीमारियों से, दुर्घटना से, अपनों से धोखा, जीवन में बार बार असफलता, दूसरों से स्वयं की तुलना करना, अपने भाग्य को कोसना, किसी पर ज़्यादा भरोसा करने के बाद सहयोग नहीं मिलना, साधनों का अभाव, प्रकृति का बदलाव, आध्यात्मिक पुरुषार्थ में कमी, सुंदरता, क्रूरता, प्यार मोहब्बत नहीं मिलता, ये सब चीज़ें हैं रोने का कारण। और मुक्ति का कारण है, गीता का सार पढ़िए, भगवान को साथ रखिए, ड्रामा की ढाल, सुमान का चिंतन, अपने विश्वास पात्र के साथ समस्या का समाधान करने के लिए चर्चा, चिंतन, अपना इलाज करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं, वो भी एक है, अगर कुछ रोना ऐसा तो ऐसी बीमारियां भी होती हैं डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर भी ऐसा हो जो इलाज कर दे, ऐसा नहीं कि और ही इलाज दे रहे। हाँ अकेले रहने की आदत, एकांत में रहना है, क्रिएटिव माइंड बनना है, घूमिए फिरिए, प्रकृति से बात कीजिए, तो ही रोने से मुक्त हो जाएंगे। हाँ रोते हुए, हाँ जोक्स, रोते हुए हंसाने की कला, जोक्स, अगर ब्राह्मण जीवन में नहीं हम हंसे तो कब हंसेगी, तो हमेशा खुश रहना। बाबा के जोक्स तो बहुत होते, जोक हाँ बहुत जोक्स होते हैं, वो एक हमने लिखे भी थे, भूल गया भी, कभी पढ़ेंगे इकट्ठे करके सारा, फिर बाबा के जोक्स इकट्ठे करके रखेंगे। ओम शांति।
आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी तस्वीर हो नाज करेगी दुनिया तुम कर दुनिया की तस्वीर हो झोली भर दोगे हंसते चलो जमाने में तू चलता हुआ एक तीर हो नाज करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तकदीर आने वाले कल की तुम तस्वीर हो नाज करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तकदीर हो मनाने आए हो नाम न लेना रोने का रोतों को हंसाने आए हो नहीं रूठना कभी कि तुम रूठों को मनाने आए हो जो रूठी तकदीर बदल दे तुम ऐसी तकदीर हो नाज करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तकदीर हो आने वाले कल की तुम तस्वीर हो नाज करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तकदीर हो एक दिन होंगे जमीन आसमां चांद सितारे हाथों में होगी एक दिन बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में दुश्मन जिसको तुम ऐसी जंजीर हो नाज करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तकदीर आने वाले कल की तुम तकदीर